काबिले परस्तिश भगवान महावीर, तथागत भगवान बुद्ध बाखबर होते हुए भी इलाकाई जबानों में गीता के ही पैगाम को पहुंचाने वाले हैं। रूह हक है और मुकम्मल एहतियात यानी जब्त नफ्स से हक शनासी की हालत का उसूल है। ये गीता का ही ख्याल है। बुद्ध ने इसी उनसुर को अलीम और लाफानी मकाम कहकर गीता के ही ख्याल को तस्दीक किया है। इतना ही नहीं बल्कि आलमी अदब में दीन के नाम पर जो कुछ भी लुब्बे लुबाब है, जैसे एक खुदा, इल्तिजा, नदामत, रियाजत वगैरह गीता की ही नसीहतें हैं। उन्हीं नसीहतों को मोहतरम स्वामी अड़गड़ानंद जी की पाक जबान से निकली हुई यथार्थ गीता सीडी की शक्ल में तमाम इंसानों की नजात का मावराई पैगाम बनकर आपके सामने मौजूद है।
ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, हकीकी गीता, श्रीमद् भगवद गीता।
अथ पंचमो अध्याय, पांचवा बाब। बाब तीन में अर्जुन ने सवाल खड़ा किया था कि बंदा परवर, जब इल्मी जोग आपके नजरिए के मुताबिक अफजल है तो मुझे आप खौफनाक आमाल में क्यों लगाते हैं। अर्जुन को बेगरज अमली जोग के मुकाबले में इल्मी जोग कुछ आसान महसूस हुआ लगता है, क्योंकि इल्मी जोग में शिकस्त मिलने पर देवता का मर्तबा और फतेह में हुजूर आला का मकाम, दोनों ही हालात में फायदा ही फायदा महसूस हुआ। लेकिन अब तक अर्जुन ने अच्छी तरह समझ लिया था कि दोनों ही रास्तों में अमल तो करना ही पड़ेगा, यानी जोग के मालिक इसे शक शुबे से आरी रम्ज आशना अजीम इंसान की पनाह लेने के लिए भी तरगीब देते हैं, क्योंकि समझने के लिए वही एक जगह है। लिहाजा दोनों रास्तों में से एक चुनने से पहले उसने अर्ज किया कि अर्जुन उवाचा,
सन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्।
हे कृष्ण, आप कभी तर्क दुनिया के जरिए किए जाने वाले अमल की और कभी बेगरज वाले नजरिए से किए जाने वाले अमल की तारीफ करते हैं। इन दोनों में से एक जिसे आप बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं, जो आला इफादी हो, उसे मुझे बताइए। कहीं पहुंचने के लिए आपको दो रास्ते बताए जाएं तो आप आसान रास्ता जरूर पूछेंगे, अगर नहीं पूछते तो आपका इरादा जाने का नहीं है। इस पर जोग के मालिक श्री कृष्ण ने कहा, श्री भगवान उवाच,
सन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते।
अर्जुन, तर्क दुनिया के वसीले से किए जाने वाले आमाल यानी इल्म के रास्ते से किए जाने वाले आमाल और कर्मयोग बेगरज ख्याल से किए जाने वाले आमाल, ये दोनों ही आला शरफ को दिलाने वाले हैं। लेकिन इन दोनों रास्तों से तर्क दुनिया इल्मी नजरिए से किए जाने वाले आमाल के बनिस्बत बेगरज अमली जोग अफजल है। सवाल फितरी है कि अफजल क्यों है।
ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते।
बाजुए अजीम अर्जुन, जो न किसी से नफरत करता है न किसी चीज की ख्वाहिश रखता है, वो हमेशा जाहिद ही समझने लायक है, चाहे वो इल्म के रास्ते से या बेगरज अमल के रास्ते से ही क्यों ना हो। हसद व अदावत वगैरह वबालों से मुबर्रा वो इंसान आराम के साथ दुनियावी बंदिश से आजाद हो जाता है।
सांख्य योगौ पृथग बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्।
बेगरज अमली जोग और इल्मी जोग, इन दोनों को ही वो लोग अलग अलग बताते हैं जिनकी समझ इस राह में अभी बहुत सतही है, ना कि आलिम फाजिल लोग, क्योंकि दोनों में से किसी एक में भी अच्छी तरह कायम हुआ इंसान दोनों के बतौर समरा रूह मुतलक को हासिल करता है। दोनों का समरा एक ही है, लिहाजा दोनों यकसा हैं।
सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति।
जहां फलसफे की नजर से अमल करने वाला पहुंचता है, वहीं बेगरज अमल के वसीले से अमल करने वाला भी पहुंचता है। लिहाजा जो दोनों को समरे की नजर से एक देखता है वही हकीकी इल्म वाला है। जब दोनों एक ही जगह पर पहुंचते हैं तो बेगरज अमली जोग खास क्यों? श्री कृष्ण बताते हैं,
सन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति।
अर्जुन, बेगरज जोग का बर्ताव किए बगैर संन्यास यानी सब कुछ वक्फ कर देना तकलीफदा है। जब जोग का बर्ताव शुरू ही नहीं किया तो गैर मुमकिन सा है। लिहाजा जलवगर माबूद के तसव्वुर में मशगूल रहने वाला सूफी, जिसके मन के साथ हवास खामोश हैं, बेगरज अमली जोग का अमल करके परवरदिगार रूह मुतलक को जल्द ही हासिल कर लेता है। जाहिर है कि इल्मी जोग में बेगरज अमली जोग का ही बर्ताव करना पड़ेगा, क्योंकि तरीका दोनों में एक ही है, वही यज्ञ का तरीका है, जिसका हकीकी माना है इबादत। दोनों रास्तों में फर्क महज कारकुन के नजरिए का है। एक अपनी कुव्वत को समझकर नफा व नुकसान देखते हुए इसी अमल में लगा होता है और दूसरा बेगरज अमली जोगी माबूद पर मुनहसिर होकर उसी अमल में लगा होता है। मिसाल के तौर पर एक खुद ब खुद तालीम हासिल करता है, दूसरा किसी मदरसे में दाखिला लेकर। दोनों का निसाब तालीम एक ही है, इम्तिहान एक ही है, मुमतहिन नाजिर दोनों में एक ही हैं। ठीक इसी तरह दोनों के मुर्शिद रमज आशना हैं और किताब एक ही है। सिर्फ दोनों के तालीम लेने का नजरिया अलग है। हां, इदारे में पढ़ने वाले तालिबे इल्म को सहूलतें ज्यादा रहती हैं। इससे पहले श्री कृष्ण ने कहा कि ख्वाहिश और गुस्सा असीरुल फतेह दुश्मन हैं। अर्जुन, तू इन्हें मार। अर्जुन को लगा कि यह तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, जिस्म से मावरा हवास, हवास से मावरा मन है, मन से मावरा अक्ल है, عقل سے ماورا تیری حقیقی شکل ہے، تو وہیں سے آمادہ ہو۔ اس طرح اپنا وجود سمجھ کر، اپنی قوت کو سامنے رکھ کر، خود مختار ہو کر عمل میں لگ جانا علمی جوگ ہے۔ شری کرشن نے کہا تھا، من کو مرکوز کرتے ہوئے اعمال کو میرے حوالے کر کے، امید و شفقت اور غم سے آری ہو کر جنگ کر، سپردگی کے ساتھ معبود پر منحصر ہو کر اسی میں لگنا بے غرض عملی جوگ ہے۔ دونوں کا طریقہ ایک ہے اور سمرہ بھی ایک ہے۔ اسی پر زور دے کر جوگ کے مالک شری کرشن یہاں فرماتے ہیں کہ جوگ کا برتاؤ کیے بغیر ترک دنیا یعنی مبارک نامبارک اعمال کے آخری مقام کو حاصل کرنا غیر ممکن ہے۔ شری کرشن کے مطابق ایسا کوئی جوگ نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے کہیں کہ میں روح مطلق ہوں، طاہر ہوں، عقل مند ہوں، میرے لیے نہ تو عمل ہے نہ اس کی بندش، میں نیک و بد کچھ کرتا دکھائی دیتا بھی ہوں تو حواس اپنی خصلت کے مطابق کام کر رہے ہیں، ایسی ریاکاری شری کرشن کے الفاظ میں بالکل نہیں ہے۔ خود بخود جوگ کے مالک بھی اپنے لاشریک دوست ارجن کو بلا عمل کے یہ مقام نہیں دے سکے۔ اگر وہ ایسا کر سکتے تو گیتا کی ضرورت ہی کیا تھی، عمل تو کرنا ہی پڑے گا۔ عمل کر کے ہی ترک دنیا کی حالت کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جوگ سے مزین انسان جلد ہی روح مطلق میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ جوگ سے مزین انسان کے نشانات کیا ہیں، اس پر فرماتے ہیں،
یوگ یکتو وشدھاتما وجیتاتما جیتیندریہ سروبھوتاتم بھوتاتما کروانپی نہ لپیتے۔
وجیتاتما، خاص طور سے فتح کر لیا گیا ہے جسم جس کا، جیتیندریہ فتح کر لیے گئے ہیں، حواس جس کے، اور وشدھاتما خصوصی طور سے جس کا باطن پاک ہے، ایسا انسان سرو بھوتاتم بھوتاتما تمام مادی جانداروں کی روح کی اصل مخزن روح مطلق سے یکساں ہوا جوگ سے مزین ہے۔ وہ عمل کرتا ہوا بھی اس میں ملوث نہیں ہوتا، تو کرتا کیوں ہے؟ اپنے تابعین کے لیے بے انتہا افادی تخم کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ ملوث کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ تمام جانداروں کا جو بنیادی مخرج ہے، جس کا نام عنصر اعلیٰ ہے، اس عنصر میں وہ قائم ہو گیا، آگے کوئی چیز نہیں ہے جس کی تحقیق کریں، پیچھے والی چیزیں چھوٹی پڑ گئیں تو بھلا رغبت کس میں پیدا کریں؟ لہذا وہ اعمال سے گھرا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ جوگ سے مزین انسان کے آخری انجام کی عکاسی ہے۔ پھر جوگ کے حامل انسان کی بود و باش کا خلاصہ کرتے ہیں کہ وہ عمل کرتے ہوئے بھی اس میں ملوث کیوں نہیں ہوتا۔
نیو کنچت کرومیتی یکتو منیت تتوویت پشن شرنون سپرشن جگرن اشنن گچھن سوپن شوسن پرلپن وسرجن گرنھن انمیشن نمیشن نپی اندریانی اندریارتھیشو ورتنت ایتی دھارین۔
عنصر اعلیٰ روح مطلق کو بدی ہی دیدار کے ساتھ جاننے والے جوگ سے مزین انسان کی یہ من کی حالت یعنی احساس ہے کہ میں ذرے کے برابر بھی کچھ نہیں کرتا ہوں۔ یہ اس کا تخیل نہیں، بلکہ یہ حالت اس نے بذریعے عمل حاصل کی ہے۔ جیسے یکتو منیت، اب حصول کے بعد وہ سب کچھ دیکھتا ہوا، سنتا ہوا، چھوتا، سونگتا، کھاتا پیتا، کھانا کھاتا، چلتا پھرتا، सोता जागता, सांस लेता छोड़ता, बोलता कबूल करता, आंखों को खोलता और उन्हें मीचता हुआ भी हवास अपनी खसलत के मुताबिक मुतहर्रिक हैं, ऐसी सोच वाला होता है, रूह मुतलक से बढ़कर कुछ है ही नहीं, और जब वो उसमें कायम ही है तो इससे बेहतर किस आराम की ख्वाहिश से वो किसी को लम्स वगैरह करेगा। अगर कोई अफजल चीज आगे होती तो रगबत जरूर रहती, लेकिन हुसूल के बाद अब आगे और जाएगा कहां और पीछे तर्क क्या करेगा, लिहाजा जोग से मुजयन इंसान मुलव्विस नहीं होता। इसी को एक नजीर के जरिए पेश करते हैं।
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सपापेन पद्मपत्रमिवांभसा।
कमल कीचड़ में होता है, उसका पत्ता पानी के ऊपर तैरता है, लहरें रात दिन उसके ऊपर से गुजरती हैं, लेकिन आप पत्ते को देखें सूखा मिलेगा, पानी की एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं ठहर पाती। कीचड़ और पानी में रहते हुए भी वो उनसे मुलव्विस नहीं होता। ठीक इसी तरह जो इंसान अपने सारे आमाल को रूह मुतलक में तहलील करके यानी बदीही दीदार के साथ ही आमाल तहलील हो जाते हैं, इससे पहले नहीं, रगबत को तर्क करके यानी अब आगे कोई चीज नहीं, लिहाजा रगबत नहीं रहती, लिहाजा रगबत को तर्क कर अमल करता है, वो भी इसी तरह मुलव्विस नहीं होता। फिर वो करता क्यों है? आप लोगों के लिए, मुआशरे के फलाही वसीले के लिए, ताबईन की रहनुमाई के लिए इसी पर जोर देते हैं।
कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये।
जोगी हजरात सिर्फ हवास, मन, अक्ल और जिस्म के जरिए भी लगाव का इशार करके रूहानी तहारत के लिए अमल करते हैं। जब अमल माबूद में तहलील हो चुके हैं तो क्या अब भी रूह नापाक ही है? नहीं, वो सर्वभूतात्म भूतात्मा यानी तमाम अरवाह की रूह हो चुके हैं, यानी तमाम जानदारों में वो अपनी ही रूह का जलवा देखते हैं। उन तमाम अरवाह की तहारत के लिए, आप सबकी रहनुमाई के लिए वो अमली जिंदगी गुजारते हैं। जिस्म, मन, अक्ल और सिर्फ हवास से वो अमल करता है, बजाते खुद वो कुछ भी नहीं करता, खुद कफील है, बाहर से मुतहर्रिक दिखाई देता है लेकिन अंदर उसमें बे इंतहा सुकून है। रस्सी जल चुकी, सिर्फ ऐठन यानी शक्ल बाकी है जिससे बंध नहीं सकता।
युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीं अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते।
योग युक्त यानी जोग से मुजयन, जोग के समरे को हासिल कर चुका इंसान जो सारे जानदारों के रूह के मखरज रूह मुतलक में कायम है, ऐसा जोगी अमल के समरे को तर्क कर यानी आमाल का समरा माबूद उससे अलग नहीं है। लिहाजा आप अमल के समरे को तर्क कर नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति सुकून के आखिरी अंजाम को हासिल होता है जिसके आगे किसी तरह का सुकून बाकी नहीं है, जिसके बाद वो कभी सुकून से खाली नहीं होता। लेकिन गैर मुनासिब इंसान जो जोग के समरे से जुड़ा हुआ नहीं है, अभी रास्ते में है, ऐसा इंसान समरे में रागिब हुआ यानी समरा है रूह मुतलक, इसमें इसका रागिब होना जरूरी है। लिहाजा समरे में रागिब होने पर भी काम कारेण निबध्यते, ख्वाहिश करके बंध जाता है, यानी शुरू से लेकर आखिर तक ख्वाहिशात बेदार होती हैं। लिहाजा रियाजत कश को मंजिल मकसूद को हासिल करने तक खबरदार रहना चाहिए। काबिल एहतराम महाराज जी कहा करते थे, हो जरा सा हम अलग, माबूद अलग हैं, तो लौ से दुनिया माया कामयाब हो सकती है। कल ही हुसूल होना हो, लेकिन आज तो वो जाहिल ही है। लिहाजा आखिरी मंजिल तक रियाजत कश को गाफिल नहीं होना चाहिए, इस पर आगे नजर डालें।
सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्।
जो पूरी तरह अपने काबू में है, जो जिस्म मन अक्ल और दुनिया से अलग खुद कफील है, ऐसा खुद इख्तियार इंसान बिला शक कुछ न करता है, न कराता है। अपने ताबईन से कराना भी इसके बातिनी सुकून का लम्स नहीं कर पाता। ऐसा खुद कफील इंसान लफ्ज वगैरह मौजूआत को हासिल कराने वाले नौ दरवाजों, यानी दो कान, दो आंखें, नाक के दो सुराख, एक मुंह, एक अजुए तनासुल, मिकद वाले जिस्मानी मकान में सारे आमाल को मन से तर्क कर अपनी रूहानी लुत्फ में ही डूबा रहता है। हकीकतन वो ना कुछ करता है ना कराता है। इसी बात को फिर श्री कृष्ण दूसरे अल्फाज में बयान करते हैं कि वो माबूद ना करता है ना कराता है। मुर्शिद, माबूद, रब, खुद कफील अजीम इंसान मुजयन वगैरह एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। अलग से कोई परवरदिगार कुछ करने नहीं आता, वो जब करता है तो उन्हीं मकाम पर पहुंचे हुए अजीम इंसान के वसीले से कराता है। अजीम इंसान के लिए जिस्म सिर्फ मकान है, लिहाजा रूह मुतलक का करना और अजीम इंसान का करना एक ही बात है, क्योंकि वो उनके जरिए हैं। दर हकीकत वो इंसान करते हुए भी कुछ नहीं करता। इसी पर अगला श्लोक देखें।
न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते।
वो माबूद ना तो मादी जानदारों के इस एहसास को कि वो ही करने वाले हैं, ना आमाल को और न आमाल के सम्राट को इत्तेफाक ही मानता है, बल्कि खसलत में मौजूद कुदरत के दबाव के मुताबिक ही सभी बर्ताव करते हैं। जैसे जिसकी खसलत मलकात फाजिला, मलकात रद्दिया, ख्वाह मलकात मजमूम वाली है, उसी सतह से वो बर्ताव करता है। कुदरत तो लंबी चौड़ी है, लेकिन आपके ऊपर उतना ही असर डाल पाती है जितनी आपकी फितरत बदनुमा या तरक्की याफ्ता है। आम तौर से लोग कहते हैं कि करने कराने वाले तो माबूद हैं, हम तो महज मशीन हैं, हमसे वो नेक कराएं ख्वाह बद। लेकिन जो के मालिक श्री कृष्ण कहते हैं, ना वो माबूद खुद करता है ना कराता है, और ना वो तरकीब ही बैठाता है। लोग अपनी खसलत में मौजूद फितरत के मुताबिक बर्ताव करते हैं, खुद ब खुद काम करते हैं, वो अपनी आदत से मजबूर होकर करते हैं, माबूद नहीं करते। तब लोग कहते क्यों हैं कि माबूद करते हैं? इस पर जोग के मालिक बताते हैं।
नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः।
जिसे अभी माबूद कहा उसी को यहां अकबर विभू कहा गया है, क्योंकि वह तमाम शौकतों से मुजयन है। अजमत और शौकत से मुजयन वो रूह है मुतलक, न किसी के अमले बद से और न किसी के अमले नेक से ही मुतासिर होता है। फिर भी लोग कहते क्यों हैं? इस वास्ते कि इल्म पर जहालत का पर्दा पड़ा हुआ है। उन्हें अभी बदी ही दीदार के साथ इल्म तो हुआ नहीं, वो अभी जी रूह हैं। लगाव के जेरे असर वो कुछ भी कह सकते हैं। इल्म से क्या होता है इसे बयान करते हैं।
ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्।
जिसके बातिन की वो जहालत, यानी जिसने इल्म को ढक रखा था, बदी ही दीदार के जरिए खत्म हो गई है, और इस तरह जिसने इल्म हासिल कर लिया है उसका वो इल्म सूरज के मानिंद उस उनसुरे आला रूह मुतलक को रोशन करता है। तो क्या रूह मुतलक किसी तारीकी का नाम है? नहीं, वो तो स्वयं प्रकाश रूप दिन राती खुद नूर मुजस्सम है तो, लेकिन हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं है, दिखाई तो नहीं देता। जब इल्म के जरिए जहालत का पर्दा हट जाता है तो उसका वो इल्म सूरज के मानिंद माबूद को अपने में रवा कर लेता है। फिर इंसान के लिए कहीं तारीकी नहीं रह जाती। उस इल्म की शक्ल क्या है?
तत्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः।
जब उस उनसुरे आला रूह मुतलक के मुताबिक अक्ल हो, उनसुर के मुताबिक मन का बहाव हो, उनसुरे आला माबूद में दुई से मावरा उसकी बूदो बाश हो और उसी का हामिल हो, इसी का नाम इल्म है। इल्म कोई बकवास या बहस नहीं है। इस इल्म के जरिए गुनाह से खाली इंसान बार बार जन्म लेने और मरने के वबाल से दूर होकर आला नजात को हासिल कर लेता है। आला नजात को हासिल करने वाला मुकम्मल इल्म से मुजयन इंसान ही आलिम यानी पंडित कहलाते हैं। आगे देखें।
विद्या विनय संपन्नी ब्राह्मणी गविहस्तिनी शुनिचैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः।
इल्म के जरिए जिनका गुनाह मिट चुका है, जो ऐसे मकाम पर पहुंच चुके हैं, जो आवागोन से मुबर्रा हैं, परम गति मकाम को हासिल कर चुके हैं, ऐसे आलिम मुनकसिरुल मिजाज ब्राह्मण और चांडाल एक गलीज जात में गाय कुत्ते और हाथी में मुसावी नजर वाले होते हैं। उनकी नजर में इल्म व खाकसारी से मुजयन ब्राह्मण ना तो कोई सिफात वाला होता है और ना चांडाल में कोई हकारत होती है, ना गाय दीन है ना कुत्ता बेदीनी और न हाथी अजमत ही रखता है। ऐसे आलिम हजरात यकबीन और हमसर होते हैं। उनकी नजर जिस्म जिल्द पर नहीं रहती बल्कि रूह पर पड़ती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आलिम मुनकसिरुल मिजाज माबूद के करीब है और बाकी सब कुछ पीछे है। कोई एक मंजिल आगे है तो कोई पिछले पड़ाव पर। जिस्म तो लिबास है, उनकी नजर लिबास को तरजीह नहीं देती बल्कि उनके मन में मौजूद रूह पर पड़ती है, लिहाजा वो कोई फर्क नहीं रखते। श्री कृष्ण ने गाय की खिदमत की थी, उन्हें गाय की अहमियत का बयान करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। श्री कृष्ण ने गाय को दीन में कोई मकाम नहीं दिया। उन्होंने महज इतना माना कि दूसरे जी रूहों की तरह इसमें भी रूह है। गाय की माली अहमियत जो भी हो, उसकी दीनी खूबी बात की लोगों की देन है। श्री कृष्ण ने इससे पहले बताया कि जाहिलों की अक्ल लामहदूद शाखों वाली होती है, लिहाजा वो लामहदूद अमल के तरीकों का फैलाव कर लेते हैं। दिखावटी आरास्ता जबान में वो इसे जाहिर करते। इनके बातों की छाप जिनकी तबीयत पर पड़ती है उनकी भी अक्ल गुम हो जाती है, वो कुछ हासिल नहीं कर पाते, बर्बाद हो जाते हैं। जबकि बेगरज अमली जोग में अर्जुन मुअय्यना अमल एक ही है, यज्ञ का तरीक़ेकार, इबादत, गाय, कुत्ते, हाथी, पीपल, नदी की दीनी अहमियत इन लामहदूद शाखों वालों की देन है। अगर इनकी कोई दीनी अहमियत होती तो श्री कृष्ण जरूर जिक्र करते। हां, मंदिर, मस्जिद वगैरह इबादत के मकाम शुरुआती दौर में जरूर हैं, वहां इज्तमाई तौर पर तरगीब देने वाले वाजो पिंद हैं, तो उनकी अहमियत जरूर है, वो दीनी वाजो पिंद के मरकज है। पेश करदा श्लोक में दो आलिम हजरात यानी पंडितों का जिक्र है। एक आलिम तो वो है जो मुकम्मल आलिम है, और दूसरा वो है जो इल्म और खाकसारी से लबरेज है। वो दो कैसे? दर हकीकत हर दर्जे की दो हदें होती हैं, एक तो आला हद आखिरी अंजाम और दूसरी इब्तिदाई या अदना दर्जे की हद। मिसाल के तौर पर बंदगी की अदना हद वो है जहां से बंदगी शुरू की जाती है, इरफान बैराग और लगन के साथ इबादत करते हैं, और आला हुदूद वो हैं जहां बंदगी अपना समरा देने की हालत में हो जाती है। ठीक इसी तरह ब्राह्मण दर्जा है, जब माबूद में दाखिला दिलाने वाली सलाहियतें आती हैं उस वक्त इल्म होता है, खाकसारी होती है और मन पर काबू, नफ्स कुशी, इब्तिदा करने वाले तजर्बात का इजरा, मुसलसल फिक्र, तसव्वुर और मुराकिबा वगैरह। माबूद में दाखिला दिलाने वाली सारी सलाहियतें उनके अंदर फितरी तौर पर काम करती रहती हैं। यह ब्राह्मण दर्जे की अदना हद है। आला हद तब आती है जब बतसलसल तरक्की करते करते वो माबूद का दीदार करके उसमें तहलील हो जाता है, जिसे जानना था जान लिया, वो मुकम्मल आलिम है। आवागोन से मुबर्रा ऐसा अजीम इंसान, उस इल्म और मुनकसरिल मिजाज ब्राह्मण, चांडाल, कुत्ते, हाथी और गाय सब पर मुसावी नजर वाला होता है, क्योंकि उसकी नजर कल्ब में मौजूद खुद की शक्ल पर पड़ती है। ऐसे अजीम इंसान को आला नजात में क्या मिला है और कैसे, इस पर रोशनी डालते हुए जोग के मालिक बताते हैं।
इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः।
उन इंसानों के जरिए जिंदा हालत में ही तमाम दुनिया पर फतेह हासिल कर ली गई जिनका मन मुसावात में कायम है। मन के मुसावात के दुनिया पर फतेह हासिल करने से क्या ताल्लुक? दुनिया मिट गई तो इंसान रहा कहां? श्री कृष्ण कहते हैं निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वो माबूद बेऐब और मुसावात वाला है, इधर उनका मन भी बेऐब और मुसावी हालत वाला हो गया। तस्माद ब्रह्मणी ते स्थिताः, लिहाजा वो माबूद में तहलील हो जाता है। इसी का नाम बार बार जन्म ना लेने वाली आला नजात है। ये कब मिलती है? जब ये दुनिया की शक्ल वाला दुश्मन काबू में आ जाए। दुनिया कब फतेह करने में है? जब मन पर काबू हो जाए, मुसावात में दाखिला हासिल हो जाए, क्योंकि मन का फैलाव ही दुनिया है। जब वो माबूद में तहलील हो जाता है उस वक्त माबूद को जानने वाले की पहचान क्या है, उसकी बूदोबाश पर रोशनी डालते हैं।
न प्रहिष्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः।
उसका कोई पसंदीदा ना पसंदीदा होता नहीं, लिहाजा जिसे लोग पसंदीदा समझते हैं उसे हासिल करके वो खुश नहीं होता, और जिसे लोग नापसंदीदा समझते हैं यानी जैसे दीनदार लोग पहचान बताते हैं उसे हासिल कर वो बेकरार नहीं होता, ऐसा कायमुल अक्ल असम मूड शक व शुभे से खाली ब्रह्मविद माबूद से मुजयन माबूद को जानने वाला ब्रह्मणि स्थितः आला ब्रह्म में हमेशा कायम है।
बाह्य स्पर्शेष्व सत्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते।
बाहरी दुनिया के मौजूदात में दिलचस्पी ना रखने वाला इंसान बातिन में मौजूद जो सुकून है उस सुकून को हासिल करता है, वो इंसान ब्रह्म योग युक्त आत्मा आला माबूद रूह मुतलक के साथ मुनासिबत कायम करने वाली रूह वाला है, लिहाजा वो लाफानी मसरत का एहसास करता है जिस मसरत की कभी फना नहीं होती। इस मसरत का इस्तेमाल कौन कर सकता है जो बाहर के मौजूआत के तायुशात से दिलचस्पी नहीं रखता, तो क्या तायुशात खलल पैदा करने वाले हैं? बंदा परवर श्री कृष्ण फरमाते हैं,
ये ही संस्पर्श जा भोगा दुखयो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नते शुरमते बुधः।
सिर्फ खाल ही नहीं सभी हवास लम्स करते हैं, देखना आंख का लम्स है, सुनना कान का लम्स है, इसी तरह हवास और उनके मौजूआत के ताल्लुक से पैदा होने वाले सारे तायुशात अगरचे लुत्फ उठाने में अच्छे लगते हैं लेकिन बिला शक व शुभा वो सब दुख यो नयह तकलीफदा शक्लों यानी यौनियों के ही वजूहात हैं। इतना ही नहीं वो तायुशात पैदा होने और मिटने वाले हैं, फानी हैं, लिहाजा कौन थे साहिबे इरफान इंसान इनमें नहीं फंसते। हवास के इन तासुरात में रहता क्या है? ख्वाहिश और गुस्सा, हसद व अदावत। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं,
शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणा काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्त ससुखी नरः।
लिहाजा जो इंसान जिस्म के फना होने से पहले ही ख्वाहिश और गुस्से से पैदा होने वाली रफ्तार को बर्दाश्त करने में यानी मिटा देने में कादिर है वो इंसान नर यानी मुलव्विस ना रहने वाला है, वही इस दुनिया में जोग से मुजयन और वही पुरसुकून है जिसके पीछे तकलीफ नहीं है, उस सुकून में यानी रूह मुतलक में कायम रहने वाला है, जिंदगी रहते ही उसके हुसूल का तरीका है, मौत होने पर नहीं। संत कबीर ने इसी का खुलासा किया, अवधु जीवत में कर आसा, तो क्या मौत के बाद नजात नहीं होती? वो कहते हैं, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा, यही जोग के मालिक श्री कृष्ण का कौल है। कि जिस्म रहते मौत से पहले ही जो ख्वाहिश गुस्से की रफ्तार को खत्म कर देने में कादिर हो गया, वही इंसान इस दुनिया में जोगी है, वही पुरसुकून है। ख्वाहिश गुस्सा बाहरी लम्स ही दुश्मन हैं, इन पर फतेह हासिल करें, इसी इंसान की पहचान फिर बता रहे हैं।
योन्तः सुखोन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेवयः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति।
जो इंसान बातिनी तौर पर पुरसुकून है, अंतरारामः, जो बातिनी तौर से मुतमईन है और जिनका बातिन मुनव्वर यानी बदी ही दीदार वाला है, वही जोगी ब्रह्मभूत माबूद के साथ एक होकर ब्रह्म निर्वाणम गैर मरई माबूद दाइमी रब में तहलील हो जाता है, यानी पहले उयूब यानी ख्वाहिश गुस्सा का खातिमा, फिर दीदार, इसके बाद दाखिला। आगे गौर फरमाएं।
लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहितेरताः।
रूह मुतलक का बदी ही दीदार करके जिनका गुनाह खत्म हो गया है, जिनके कश्मकश वाले हालात खत्म हो गए हैं, तमाम जानदारों की रिफाह में जो लगे हुए हैं, यानी हुसूल वाले ही ऐसा कर सकते हैं, जो खुद गढ़े में पड़ा है दूसरों को क्या बाहर निकालेगा। लिहाजा रहम दिल अजीम इंसान की कुदरत सिफात हो जाती है। और यतात्मानः, जब्त नफ्स के हामिल रब को जानने वाले इंसान पुरसुकून आला माबूद को हासिल करते हैं, उसी अजीम इंसान की हालत पर फिर रोशनी डालते हैं।
काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मना।
ख्वाहिश और गुस्से से आरी तबीयत पर काबू रखने वाले रूहे मुतलक का बदी ही दीदार करने वाले अहले इल्म इंसानों के लिए हर जानिब से पुरसुकून आला माबूद ही हासिल है। बार बार जोग के मालिक श्री कृष्ण उस इंसान की बूदोबाश पर जोर दे रहे हैं जिससे तरगीब मिले। सवाल तकरीबन पूरा हुआ। अब ये फिर पुरजोर तरीके से कहते हैं कि इस मकाम को हासिल करने का जरूरी हिस्सा तनफ्फुस का गौर व फिक्र है। यज्ञ के तरीके कार में जान का रियाह में हवन, रियाह का जान में हवन, जान रियाह दोनों की रफ्तार की बंदिश उन्होंने बताई थी, उसी को समझा रहे हैं।
स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः।
अर्जुन, बाहर के मौजूआत मनाजिर का गौर फिक्र ना करते हुए उन्हें तर्क कर, आंखों की नजर को अब्रू के बीच में साकिन करने, भ्रुवोह अंतरे का ऐसा मतलब नहीं कि आंखों के बीच या अब्रू के बीच कहीं देखने के ख्याल से नजर जमाएं। अबरू के बीच का खालिस माने सिर्फ इतना है कि सीधे बैठने पर नजर अबरू के ठीक बीच से सीधे सामने पड़े, दाएं बाएं इधर उधर चकपक ना देखें, नाक की नोक पर सीधे नजर रखते हुए, यानी कहीं नाक में ही ना देखने लगें। नाक के अंदर हरकत करने वाले जान और रियाह दोनों को एक बराबर करके, यानी नजर तो वहां कायम करें और सूरत को सांस में लगा दें कि कब सांस अंदर गई, कितनी देर तक अंदर रुकी। तकरीबन आधा सेकंड रुकती है, कोशिश करके ना रोकें। कब सांस बाहर निकली, कितनी देर तक बाहर रही। कहने की जरूरत नहीं कि सांस में उठने वाले नाम की आवाज सुनाई पड़ती रहेगी। इस तरह तनफ्फुस पर सूरत साकिन हो जाएगी तो धीरे धीरे सांस अटल साकिन होकर ठहर जाएगी, मुसावी हो जाएगी। ना अंदर कोई इरादा पैदा होगा और ना खारजी इरादे टकराव कर पाएंगे। बाहर के तायुशात की फिक्र तो बाहर ही तर्क कर दी गई थी, अंदर भी इरादे बेदार नहीं होंगे। सूरत एकदम साकिन हो जाती है, तेल की धार की तरह। तेल की धारा पानी की तरह टिप टिप नहीं गिरती, जब तक गिरेगी धार ही की तरह गिरेगी। इसी तरह जान और रियाह की रफ्तार बिल्कुल मुसावी साकिन करके हवास, मन और अक्ल पर जिसने काबू पा लिया है, ख्वाहिश, खौफ और गुस्से से आरी गौर फिक्र की आखिरी हद तक पहुंचा हुआ नजात का हामिल सूफी हमेशा आजाद ही है, यानी नजात वाला ही है। नजात पाकर वो कहां जाता है, क्या हासिल करता है, इस पर कहते हैं
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति।
वो नजात याफ्ता इंसान मुझे यज्ञ और रियाजत का सारिफ, तमाम अवालिम का रब्बुल अरबाब, सारे जानदारों का बेगरज खैरख्वाह, हमदर्द, ऐसा मुजस्सम जानकर पूरी तरह से सुकून हासिल कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस इंसान के तनफ्फुस के यज्ञ और रियाजत का सारिफ मैं हूं। यज्ञ और रियाजत आखिर में जिसमें तहलील हो जाते हैं वो मैं हूं, वो मुझे हासिल होता है। यज्ञ के आखिर में जिसका नाम सुकून है वो मेरी ही हकीकी शक्ल है। वो नजात याफ्ता इंसान मुझे जानता है और जानते ही मेरे मकाम पर पहुंच जाता है, इसी का नाम सुकून है। जैसे मैं रब्बुल अरबाब हूं वैसे ही वो भी है। मग़्ज़े सुखन निष्कर्ष। इस बाब के शुरू में अर्जुन ने सवाल किया था कि कभी तो आप बेगरज अमली जोक की तारीफ करते हैं और कभी आप तर्क दुनिया के रास्ते से अमल करने की तारीफ करते हैं, लिहाजा दोनों में से एक को जिसे आपने तय कर रखा हो, आला इफादी हो, उसे बताइए। श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन आला इफादा तो दोनों में है, दोनों में वही मुअय्यना यज्ञ का अमल ही किया जाता है, फिर भी बेगरज अमली जोक खुसूसी है, इसे किए बगैर तर्क दुनिया यानी मुबारक ना मुबारक आमाल का खातिमा नहीं होता। तर्क दुनिया रास्ता नहीं मंजिल का नाम है, जोक से मुजयन ही तारिकुद दुनिया है। जोक के हामिल इंसान की पहचान बताई कि वही रब है, वो ना करता है ना कुछ कराता है, बल्कि खसलत में कुदरत के दबाव के मुताबिक लोग मशगूल हैं। जो मुजस्सम मुझे जान लेता है वही आलिम है, वही पंडित है। यज्ञ के समरे में लोग मुझे जानते हैं, तनफ्फुस का विर्द और यज्ञ वो रियाजत जिसमें तहलील होते हैं, वो मैं ही हूं। यज्ञ के समरे की शक्ल में मुझे जानकर वो जिस सुकून को हासिल करते हैं, वो भी मैं ही हूं। यानी श्री कृष्ण जैसे अजीम इंसान जैसी शक्ल उस हासिल करने वाले को भी मिलती है, वो भी रब्बुल अरबाब बशक्ल रूह हो जाता है, उस रूह मुतलक के साथ यकसा हो जाता है। यानी यकसा होने में जन्म चाहे जितने लगें, इस बाब में आयां कर दिया कि यज्ञ और रियाजतों का सारिफ अजीम इंसानों के अंदर रहने वाली ताकत रब्बुल अरबाब है, यानी महेश्वर है। लिहाजा ओम तत्सदिति श्रीमद भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे यज्ञ भोक्ता महापुरुषस्त महेश्वर नाम पंचमो अध्याय। इस तरह श्रीमद भगवद गीता की तमसील उपनिषद और इल्म तसव्वुफ व इल्म रियाजत से मुतालिक श्री कृष्ण और अर्जुन के मुकालिमे में सारिफ यज्ञ रब्बुल अरबाब नाम का पांचवां बाब मुकम्मल होता है। इति श्रीमद परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अड़गणानंद कृते श्रीमद भगवद गीतायः यथार्थ गीता भाष्ये यज्ञ भोक्ता महापुरुषस्थ महेश्वरः नाम पंचमो अध्यायः। इस तरह काबिले एहतराम श्री परमहंस परमानंद जी के मुकल्लिद स्वामी अड़गणानंद के जरिए लिखी श्रीमद भगवद गीता की तशरीह यथार्थ गीता हकीकी गीता में सारिफे यज्ञ रब्बुल अरबाब यज्ञ भोक्ता महापुरुषस्त महेश्वर नाम का पांचवां बाब मुकम्मल हुआ। हरिओम तत्सत्।